بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة في تعريف هذا الفن. ہماری بیس بدایت الحکمت میں ہے. بدایت الحکمت کا جو مصنف ہے وہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ ہیں. اچھا، ابھی جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ فلسفہ ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلسفہ ہے، تو سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فلسفہ ہے کیا؟ جب تک آپ کسی علم کی تعریف نہیں جانیں گے، تب تک کتاب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تب تک مثلا انسان کا انگیزہ کسی علم کے پڑھنے کے لیے تب ہوتا ہے جب اس کی کچھ نہ کچھ معرفت ہو. اسی لیے مقدمتاً کچھ عرائض آپ کے محضر میں پیش کرنے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کتاب کا متن شروع کریں کہ علامہ کیا فرما رہے ہیں، کچھ عرائض آپ کے محضر میں بیان کریں گے. اور یہ درواقع یہ جو باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، یہ اس عبارت اور اس علم کو سمجھنے کے لیے مفید ہیں. خوب، فلسفہ جب کہا جا رہا ہے، فلسفہ یعنی کیا؟ فلسفہ آیا عربی لفظ ہے، انگلش کا ہے، فارسی کا ہے، اردو کا ہے؟ سیدھی سی بات، ہر لفظ کسی نہ کسی لینگویج کا ہوتا ہے، کسی زبان کا ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے. تو آپ کی محضر میں عرض کریں، یہ لفظ یونانی ہے. یہ جو فلسفہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یونانی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، نہ سندھی ہے، نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے. فلسفہ یونانی لفظ ہے، یونان سے لفظ آیا ہے. اچھا، فلسفہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فلسفہ اصل میں تھا فیلوسوفیا. کیا تھا؟ فیلوسوفیا. یہ فیلوسوفیا یا فیلوسوفیا کہیں، جس کا جو بھی تلفظ ہو، بھلا اس سے ہماری زیادہ بحث نہیں ہے کہ صرف کی طرح کوئی ہم اس کے بارے میں بحث کریں. فیلوسوفیا کیا ہے؟ منطق کا آپ نے نام رکھا منطق. کیوں؟ کیوں کہتے ہیں کہ منطق کا کام عقل اور تفکر کے ساتھ ہے، اور انسان کا جو نطق باطنی ہے اس کی تصحیح کے لیے اس علم کو لکھا گیا ہے. اسی لیے منطق کو منطق کہا جاتا ہے، نطق باطنی کو وہ کی تصحیح کرتی ہے. انسان کی جو فکر ہے اس کی غلط افکار یا مثلا جو اشتباہات ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے منطق پڑھتے ہیں، تاکہ وہ اشتباہات نہ کریں. ٹھیک، ادبیات پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں. صرف کا مطلب کیا ہے؟ گردان گھمانا. وہ صرف سیغے ہوتے ہیں مختلف، ضرب پھر یضرب بن جاتا ہے، پھر ضاربن، پھر اضرب، پھر لم یضرب، حل یضرب، لا یضرب. خوب، یہ گھمانے کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ صرف، علم صرف. منطق کا منطق کیوں نام پڑا؟ بسبب نطق باطنی، اس کی تصحیح ہوتی ہے. تو فلسفے کا فلسفہ نام کیوں پڑا؟ خوب، آ رہے ہیں آرام آرام سے. فلسفہ بس یونانی لفظ ہے، ایک بات. فلسفہ مرکب ہے فیلوسوفیا سے، فیلوسوفیا سے. اچھا، فیلو کہتے ہیں محبت کو. فیلو کہتے ہیں کس کو؟ محبت کو. اور صوفیہ کسے کہتے ہیں؟ علم اور دانش کو. फिलोसोफिया यानी जो इल्म से मोहब्बत करे उसको फलसफा कहा जाता है। यानी फिलोसोफिया, तवज्जो कीजिएगा, यानी ये ऐसे नहीं कि किसी ने हर ऐसे एवं ही नाम रख दिया है, नहीं ऐसे नहीं, फजूल में तो नाम नहीं होते किसी भी इल्म के। इतने बड़े उलमा, बुजुर्गान, मुल्ला सदरा से लेकर अल्लामा तबातबाई, शेख अशराक, इबन सीना, इनकी हज़ारों किताबें हैं। खूब फ़लसफ़ा नाम है इसका, जो इल्म पढ़ रहे हैं इसकी अभी बिदाया पढ़ेंगे, बिदाया के बाद नहाया, नहाया के बाद अल्लाह आपको तौफीक दे शरह मंजूमा मसलन, उसके बाद असफ़ार, फिर इरफान की कुतुब हैं। खूब, बस इस इल्म का नाम क्या है? फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा मुरक्कब है फेलो
सूफिया,
सूफिया या सूफिया से। फेलो का मतलब क्या है? मोहब्बत। सूफिया से मतलब क्या है? इल्म और दानिश। खूब, ये यानी इल्म से मोहब्बत, लफ्जी माना इसका क्या हुआ? इल्म से मोहब्बत। अच्छा, ये फिलोसोफिया लफ्ज जो यूनानी था मुंतकिल हुआ अरब में, अरबी में, ठीक, यूनानी यूनान में था, अब ये मुंतकिल हुआ किधर? अरबी में। अरबी में इसको कहते हैं फेलसूफ, फिलोसोफिया था, हाँ अब हो गया फिलसूफ, फिलसोफिया से हो गया फिलसूफ। फिलसूफ का मतलब क्या है? आप कहते हैं ये फिलसूफ है मसलन, फिलसूफ है, या कहें फलसफी है मसलन, यानी क्या, यानी उसका दिमाग खराब है? नहीं, फिलसूफ का, फिलसूफ का मतलब है यानी वो इंसान जो इल्म से मोहब्बत करता है। खूब, बस फलसफा यानी इल्म से मोहब्बत करना। फिलोसोफिया मुंतकिल हुआ अरबी में, क्या होगा? होगा फिलसूफ। फिलसूफ यानी हर वो इंसान जो इल्म से मोहब्बत करे। अब आते हैं असल बहस की तरफ। ये जो उलूम हैं, उलूम के दो हिस्से हैं। कुछ ऐसे उलूम हैं जिनका ताल्लुक जानने से है, जानना, उनकी मारिफत हासिल करना, इनको कहा जाता है उलूम नजरी। मा यंबगी अन युअलम, ऐसे उलूम जिनका जानना, जिनको जानना चाहिए। कुछ उलूम ऐसे हैं, मा यंबगी अन युअमल या अन यअमल, ऐसे उलूम जिनका अमल करना जरूरी है, जिन पे अमल करना जरूरी है। बस इल्म की दो किस्में, कुछ ऐसे हैं जो अमली हैं, कुछ ऐसे हैं जो नजरी हैं। तवज्जो कीजिएगा, जो उलूम नजरी हैं, जिनको उलूम नजरी कहा जाता है, खूब, ऐसे तीन उलूम हैं, खुद ऐसे तीन उलूम हैं। कुछ ऐसे उलूम हैं, कुछ ऐसे उमूर हैं जो खारिज में मादे के मोहताज नहीं है, खारिज में मादे के मोहताज
नहीं।
हो यानी ऐसे कहें कि जो हिकमत नजरी है या इल्म नजरी कहें, हो, उनमें से कुछ ऐसे उलूम हैं जो नज़हन में मादे के मोहताज नहीं है, न खारिज में न ज़हन में। जैसे मसलन मैं कहूँ वहदत, इल्लियत, वहदत का खारिज में वजूद है, दिखाएं, इल्लियत है वजूद इसका, बस न इसका खारिज में वजूद है न ज़हन में। हो, कुछ ऐसे उलूम है। या मसलन खिदमत के बारे में आप बहस करेंगे कि फलां चीज कदीम है, इसका खारिज में वजूद, खिदमत, लफ्ज़ खिदमत के बारे में। इसी तरह सारे उमूर इनके बारे में आप बहस करते जाएं, इनका खारिज में वजूद नहीं है।
वहदत पे माना इत्तेहाद,
जी इत्तेहाद, लफ्ज़ वहदत का खारिज वजूद नहीं है। इल्लियत का खारिज वजूद,
इल्लियत के माना इल्लत,
इल्लियत दूसरी चीज है, इल्लत दूसरी चीज है,
वही है
वहदत दूसरी चीज है, इल्लत दूसरी चीज है, इल्लियत। मसलन आपको ऐसे समझाऊं मैं, एक दफा होता है जौज, एक होती है जौजा, हो जौजा ही मौजूद है, जौजा मौजूद है, जौज भी
मौजूद है,
जौजियत कहाँ है, देखा है खारिज में, ये एक ताल्लुक है जिसका खारिज में वजूद नहीं है, ये आपके जहन में है। जौज दिखाएंगे आप, जौजियत दिखाएंगे, लेकिन लफ्ज जौजियत आप नहीं दिखाएंगे आप। खूब इस अंदाज से सारे हलूम जर्रा जो सवाल आपके जहन में आए इसी पे तदबीक करते जाएं। अच्छा, ये जो उमूर हैं जिनको जो मादे के मोहताज नहीं है, इनको कहा जाता है फलसफे उला या मिताफिजिक, फलसफे उला या मिता हो, यानी ऐसे कुल्ली अहकाम, ऐसे कुल्ली अहकाम जिसमें हजम अदद सतह की जरूरत नहीं पड़ती। वादत कितने किलो है, जोजियत कितने किलो है, कितनी होती है, इसमें हजम नहीं होता, इसकी वो सिस्टम ये नहीं होता, बस ये क्यों, क्योंकि ये किसकी सिफात है, इतने किलो होना, इतने मीटर होना, इतना होना, ये किसकी सिफात है, मादे की। खारिज मसलन ये बुखारी है, खूब ये मोबाइल है, ये दीवार है, आप कहेंगे दीवार इतने मीटर है, दीवार इतने मीटर है, मसलन 6 मीटर है, खूब क्यों, क्योंकि ये मादा है, क्योंकि इसका मटेरियल है, मटेरियल है तो वो इतना होगा। ईंटें हैं, मसलन ईंटें पड़ी हुई हैं, ईंट को आप कहेंगे तो मसलन ईंट को जब तस्वर करेंगे यानी क्या, कितने मसलन 10 ईंटें, 12 ईंटें, 2 ईंटें, 1 ट्राली ईंटों की क्या है, अदद की मोहताज है, ये मादा चाहिए उसके लिए, लेकिन जोजियत के लिए कोई मादा आप तस्वर करें कि मसलन जोजियत 2 किलो, जोजियत 4 किलो, जोजियत 4 ट्रालियां, वहदत 6 ट्रालियां, 8 किलो, ये तस्वर, ये दरवा के ये ऐसा अहकाम कुल्ली हैं, ऐसे अहकाम कुल्ली हैं जो अदद खत मकदार हजम के मोहताज नहीं होते। वाज़े हो गया
बुखारी क्या?
अच्छा, ये हिकमत है नजरी, ये पूरा मुकम्मल कर ले, फिर आखिर में सवाल कीजिएगा। ये हिकमत है नजरी का एक बख्श हो गया, एक किस्म हमने क्या बयान किया, हिकमत नजरी की खुद 3 अकसाम है,
3 अकसाम।
कुछ ऐसे उमूर हैं, कुछ ऐसे उमूर हैं जो मादे के मोहताज नहीं
है।
अच्छा, यहीं पर ये जो बहस है कि अहकाम कुल्ली जो मादे के मोहताज नहीं है, हजम के मोहताज नहीं है, जिसको फलसफे उला भी कहा जाता है, इसी बख्श में हम बहस करेंगे खुदा शनासी के बारे में, फलसफे इलाही के बारे में बहस करेंगे। फलसफे इलाही यानी क्या, यानी ऐसा हुक्म कुल्ली खूब जो हजम अदद मादे का मोहताज नहीं है। आप खुदा को जब साबित करेंगे कि खुदा है, कैसे साबित करेंगे, ऐसे अक्सर अफराद जो इश्तबा करते हैं यही करते हैं, यानी मैं हूं, मैं आप जो कह रहा हूं, मसलन मेरा वजूद है, मैं जो कह रहा हूं आप हैं, खूब अब खुदा के बारे में जो तस्वर करता है कि फिर अपने साथ मुकायसा करता है, मैं जो हूं तो मेरे लिए अब्बू है, माँ है, बाप है, वालदेन है, मकदार है, तो फिर सवाल करेगा कि मेरा खालिक कौन है, अब कह रहे हैं अल्लाह है, तो अगर अपने साथ मुकायसा करेगा तो कहेगा उसको किसने खल्क किया है, वो कैसे दिखता है, वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि अपने साथ मुकायसा करता है, खुद मादा है, खुद को जो जिस्म है तो उसका भी क्या
जिस्म
तस्वर कर रहा है, हालांकि ऐसे नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें न मकदार है, न अदद है, न हजम है, न मादा है, मादे से कुल्लन वो मावरा है, उसमें मादा होता ही नहीं, ये अब इस आलम की मैं आपको चीजें बता रहा हूं जिसका मादा नहीं होता, जोजियत मसलन वहदत, इन चीजों का कोई मादा नहीं होता, इसको फलसफे उला कहा जाता है, फलसफे या मिताफिजिक, मेटाफिजिक भी आप इसको कह सकते हैं, नाम लिखिए फकत, या माबादत तबीया, माबादत तबीया, एक होता है तबीयात, एक होता है माबादत तबीयात। तबीयात क्योंकि इब्ने सीना ने जो किताबें लिखी थी मसलन वैसे लिखी थी, पहले तबीयात के बारे में बहस की, उसके बाद माबादत तबीयात, ये तबीयात के बारे में बहस होगी, कभी इसके बारे में बहस की, कभी उसके बारे में बहस की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी जो तबीयत में नहीं आती, इस आलम माध्यम में नहीं आती, उसके बारे में बहस। बस एक किस्म क्या हो गई, फलसफे उला या मेटाफिजिक या इल्म माबादत तबीयत। अच्छा ये वाजे हो गई किस्म। एक हिकमत नजरी की जो दरवाके दूसरी किस्म है या दूसरा बख्श है, जिसको फलसफे वुस्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फलसफे ये क्या था, फलसफे, ये अब दूसरा क्या है, फलसफे वुस्ता। खूब, ये रियाजियात के बारे में बहस करता है, किसके बारे में,
रियाजी।
खूब, कुछ ऐसे उमूर हैं जो खारिज में मादे के मोहताज हैं, खूब, लेकिन जहन में मादे के मोहताज
नहीं।
खारिज में उनको मादा चाहिए लेकिन जहन में मादा
नहीं
चाहिए, जैसे उलूम रियाजियात, उलूम मतलब मैं कहूं एक जहन में एक, एक को मादा चाहिए, दो को, तीन को, चार को मादा चाहिए, इसको मटेरियल चाहिए जहन में, नहीं चाहिए, लेकिन कहूं एक कुर्सी मादा चाहिए, एक पलंग, एक सोफा, एक इंसान, मादा चाहिए नहीं चाहिए,
चाहिए,
चाहिए। बस इल्म रियाजियात और हिकमत नजरी में से वो उलूम जो नजरी हैं, जिनका जानना जरूरी है, जिनका जानने से ताल्लुक है, अला जरूरी मैं न कहूं, जिनका जानने से ताल्लुक है, एक तो वो थे जो न ज़ेहन में मादे के मोहताज है न खारिज में मादे के मोहताज है। कुछ ऐसे उलूम हैं जो जो खारिज में तो मादे के मोहताज हैं लेकिन ज़ेहन में मादे के मोहताज नहीं है। मैं एक को तसव्वुर करूं मुझे मादे की जरूरत नहीं, दो को तसव्वुर करूं मादे का मोहताज नहीं हूं, लेकिन खारिज में अगर कोई एक होगा तो किसी शिकल में होगा, खारिज में अगर कोई एक होगा तो किसी शिकल में होगा, मसलन रियाजियात में मसलन, तो हो गया। अच्छा, एक कुर्सी, एक दीवार, एक शख्स, हाँ, एक मसलन पल, एक सैयद, ये क्या है, हाँ, एक मोबाइल। अच्छा अच्छा, तीसरा जो तीसरी जो किस्म है दरवाके, वो है ऐसे उलूम या ऐसे उमूर कहें, ऐसे उमूर जो खारिज में ही मादे के मोहताज हैं, ज़हन में ही मादे के मोहताज हैं, दोनों मादे के मोहताज हैं। वादे हो गया, खारिज में ही मादे के मोहताज हैं, हालांकि इनमें क्योंकि तकसीम में आ गए हैं इसलिए इनको बयान कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई अभी लेना देना
नहीं।
ये केमिस्ट्री फिजिक्स यही है, केमिस्ट्री फिजिक्स, ये इनका खारिज में भी मादे के मोहताज हैं, ज़हन में भी मादे के, ये तजुर्बा तब तक नहीं होगा जब तक वो चीज हो, यानी आप तसव्वुर कैसे करेंगे, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं मसलन, ऐसे करेंगे तसव्वुर, केमिस्ट्री करेंगे कैसे, होगा तो होगा ना, तो ज़हन में भी मादे के मोहताज हैं, खारिज में मादे के
मोहताज।
अच्छा, ये इसको कहते हैं उलूम तबीई, वो कहा ना माबादत तबीयत,
इसको तजरबियात भी कह सकते हैं।
जी जी बिल्कुल, तजरबियात भी कह सकते हैं, इस दायरे में आता है। अभी सब्र करें, ये ऐसे उलूम थे जिनमें क्या था,
दोनों,
जिनमें जिनका जिनका जानने से ताल्लुक था, जिनका किससे ताल्लुक था, रियाजी में कोई अमल है, तबीया में कोई अमल है, गुनाह सवाब कोई ऐसा कोई सिस्टम है, ये जानने का ताल्लुक है, जानने से इनका क्या है ताल्लुक है, इनको उलूम नजरी कहा जाता है, हिकमत नजरी कहा जाता है, इल्म नजरी कहें या हिकमत नजरी कहें। अच्छा, पहले का नाम क्या था, फलसफे उला, दूसरे का नाम क्या था, रियाजियात या फलसफे वुस्ता, और तीसरे का नाम क्या था, इल्म मादी व तबीई या हिकमत तबीई कहते हैं, हिकमत तबीई कहते हैं। बहरहाल अब आ जाए फलसफे अमली की तरफ, हिकमत अमली। ये अब तक हम तीन अकसाम जो हमने पढ़ी ये क्या थी, हिकमत
नजरी,
अहसन तुम, अब क्या है, फलसफे
अमली।
خوب، یہ فلسفہ عملی میں شناخت سے اس کا تعلق، اس سے بحث نہیں ہے، شناخت جاننے سے اس کا تعلق. ہاں خوب، اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. اس کا تعلق کسے؟ ہمارے
عمل
سے. اچھا، کچھ ایسے امور ہیں ان میں سے جو ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک سے مسئلہ، ایک شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے کریں نہ کریں اس کو کرنا ہے، دوسروں کی اپنی ذمہ داری. یعنی ایسے نہیں ہے کہ مثلا کوئی کرے، نہیں، اس کے ساتھ تعلق ہے. اسے کہتے ہیں علم اخلاق. علم فرد واحد سے تعلق ہے، اس کو اپنا اخلاق سدھارنا ہے، اس کو اپنا اخلاق سدھارنا ہے، اس کو اپنا سدھارنا ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے اخلاق اجتماعی بن جائے، مثلا ایک علاقے کا اخلاق بہت اچھا ہے، کوئٹہ والوں کا اخلاق اچھا ہے، مثلا نجف والوں کا اخلاق اچھا ہے، کم والوں کا اخلاق اچھا ہے، اس علاقے کے رہنے والے مثلا مہمان نواز ہیں. خوب، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا کسی دوسرے فرض کے ساتھ تعلق نہیں کہ فلاں نہیں کرتا اس لیے نہیں کروں گا. نہیں نہیں، تمہارے ساتھ تعلق ہے. اسے کیا علم اخلاق کہا جاتا ہے. اچھا، ایک کچھ امور ان میں سے ایسے ہیں حکمت عملی میں، وہ تھا حکمت نظری. یہ کیا ہے؟ تین امور حکمت عملی یا فلسفہ عملی. کچھ امور کا تعلق کس سے؟ خاندان سے ہے. اسے کہا جاتا ہے تدبیر منزل.
تدبیر
منزل نمبر تین. تدبیر منزل سمجھے، یہ خود الگ علم ہے. ایک تدبیر منزل میں ہم پڑھ جائیں گے تو ہمارے اس میں پتہ نہیں کتنے جلسے اور درس ختم ہو جائیں گے. تدبیر منزل، شادی کی ہے نا، تدبیر منزل. اچھا، یہ فرد واحد سے تعلق نہیں ہے. منزل جگہ جہاں رہ رہا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے، بیوی کے ساتھ کیسے، بیٹی کے ساتھ کیسے، بہن کے ساتھ کیسے، بھائی کے ساتھ کیسے، منزل کی تدبیر. یہ بھی جاننا نہیں ہے، کرنا ہے. عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی لیے حکمت عملی میں اس کو کہا گیا ہے. تیسری جو قسم ہے حکمت عملی میں یا فلسفہ عملی میں، وہ ہے کیا؟ سیاست مدن. سیاست مدن یعنی کیا؟ جانے جس کا مملکت کے ساتھ تعلق ہے. کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ تعلق ہے. اب ملک کی سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارے مثلا سکھر کا ایم این اے کیسے ہونا چاہیے، ایم پی اے کیسا ہونا چاہیے، اس کا شہردار اور اس کا رئیس کیسا ہونا چاہیے. یا اب گھر سے باہر نکل آیا، پہلے شخص، پھر گھر، منزل، اب علاقے اور شہر اور ملک تک پہنچ گیا، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی جاننا نہیں ہے، کرنا ہے. یعنی ایسے نہیں کہ کوئی وڈیرا کہے کہ میں فقط وڈیرا بن گیا. نہیں، آپ اگر وڈیرے بنے ہیں، ایم این اے بنے ہیں، ایم پی اے بنے ہیں، کسی شہر کے اگر سلطان بنے ہیں تو عدل کرو. عدل کرو، عدل کو جانو نہیں، عدل کرو. امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان پیسہ ہو اس کے پاس اور خرچ نہ کرے، اس کا کیا ہے؟ اس اجیر کی طرح ہے. جیسے شیخ انصاری رحمتہ اللہ علیہ کے لیے ایک ملتا ہے قصہ نہیں، حقیقت ہے، ہم تک پہنچا اس لیے قصہ بن گیا. شیخ انصاری کے ایک بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے اس کا پتہ نہیں مجھے، لیکن آگا مجتہدی تہرانی بیان کر رہے تھے، میں نے خود سنا ہے. وہ اگر بھائی تھے، وہ پھر جیسے گھر میں جاتے ہیں، تم مجتہد بن گئے ہو، ماں نے کہا تم مجتہد بن گئے ہو، اپنے بھائی کو کم دیتے ہو، اتنا پیسہ ہے مثلا. خوب دوسرے طلاب ہیں، مرجے تھا نا آگا شیخ انصاری، مرجعیت تھی ان کے پاس. جیسے مثلا ابھی فرض کریں، ابھی مثلا آگا سیستانی حافظ اللہ کے پاس ہے، رہبر معظم کے پاس ہے، آگا بھائی خراسانی ہے، بزرگان کے پاس ہے، ان کے پاس مرجعیت تھی. ماں نے کہا تم مرجے ہو، بھائی تمہارا فقیر ہے، اس کو اتنا ہی دیتے ہو جتنا دوسروں کو دیتے ہو. مطلب شہریہ، اگر عابد علی کا 2 لاکھ تمہیں آئے، तो आगा का जो भाई था उसको भी 2 लाख तो मन देते थे आगा साहब, ऐसे नहीं कि उसको 1 मिलियन दे दें, ऐसे नहीं करते थे। तो माँ ने जैसे ही कहा तो आगा ने, आगा शेख खान ने कहा, क्योंकि माँ थी, माँ का एहतराम है, ऐसे नहीं कहा कि नहीं दूंगा, ऐसे नहीं कहा, क्या कहा उन्होंने, ये बयान फरमाया शेख अंसारी ने कि अम्मा ये चाबियां संदूक की हैं जिसमें सहमे इमाम है, सहमे सादात है मसलन, ये आप जितना उठाएं अपने बेटे को दे दें एक शर्त के साथ। शर्त कौन सी है? शर्त ये है कि जितना देंगी कयामत के दिन मौला को जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूँ, यानी इसका गुनाह आप अपने जिम्मे लें, आप माँ हैं, मैं आपको ना नहीं कर सकता। दरवाके अदब का तकाजा ये था, वरना तो ना तो कर सकते थे कि मैं अपने वलों की, मेरा भाई है लेकिन चाबियां लें आप कहें कि मैं मौला को जाके खुद जवाब दूंगी, आप उठाएं और जितना ले देना इसको दे, फकीर है तो दे, बाकी मैं इसको एक पाई भी ज्यादा नहीं दे सकता। जब माँ ने सुना कि वाकई नहीं ये तो मेरे गले में आ रहा है सारा कुछ, कयामत के दिन मुझे हिसाब देना पड़ेगा, मौला इमाम जमाना अजल्ला फरजो शरीफ को मुझे, मैं जवाब दूंगी और इमाम जमाना को मैं जवाब दूंगी, उसने कहा बेटा अगर ऐसे है तो फिर ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अगर वाकई हिसाब किताब और अदल की जब बात आ गई तो उनकी माँ भी पीछे पीछे हट गई। तो इस हिसाब से बस तीसरी जो किस्म है दरवाग के हिकमत अमली की, वो क्या है? सियासत मुदन, यानी क्या? मदीने की सियासत। मदीने के मतलब यानी मुल्क की, ममलिकत की, अगर आपके हाथ में आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि मसलन कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई करीबी आ जाए, भाई आ जाए, बहन आ जाए, उसको अकरबा परवरी करते हुए ज्यादा दे दे आदमी, बाकी सारे जो चापलूस है, जो बैग उठा रहा है उसको माल ज्यादा मिल रहा है, जो गरीब फकीर है उसको कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो 3 ऐसे उलूम हैं जिनका जानना नहीं है बल्कि अमल, अमल से उनका ताल्लुक है। उमर साहब, नंबर 1 क्या था? अखलाक। नंबर 2 तदबीर अहसन, तुम नंबर 3 सियासत मुदुन। इसका ताल्लुक किसके साथ है? हुकूमत के साथ है। हुकूमत का क्या वजीफा है? खूब बस अभी तक हमने क्या पढ़ा? फलसफा, फलसफे का माना, लुगवी माना, फलसफा कहाँ से आया ये पढ़ा हमने। फलसफे की खुद 2 किस्में हैं, फलसफे नजरी या हिकमत नजरी, या फलसफे अमली या हिकमत अमली। फलसफे नजरी में 3 उलूम थे, याद करें। नंबर 1 फलसफे उला, जिसे हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा रियाजियात, जिसको फलसफे वुस्ता कहा जाता है। नंबर 3 फलसफे तबीयात, हाँ, जिसको इल्मे तबीयात कहा जाता है। खूब, दूसरी जो किस्म थी वो थी हिकमत अमली की, उसकी खुद 3 किस्में थी जो अभी आपके सामने बयान की। अखलाक, तदबीर मंजिल, सियासत मोदन। अच्छा, ये फलसफा इस माना में, यानी एक आपके जहन में ये चीज अर्ज करूं मैं, शायद इसका जानना भी आपके लिए जरूरी है। पहले जो था पुराने दौर में, फलसफा इन सारे उलूम को शामिल होता था, फलसफा यानी माँ, फलसफा तबीयात को भी शामिल था, रियाजियात को भी शामिल था, इल्म अखलाक को भी शामिल था, इल्म तदबीर मंजिल को भी शामिल था, इल्म सियासत मुदन को भी
शामिल।
फलसफा जब कहते थे तो ये सारे उलूम इसमें आ जाते थे, पहले ऐसे होता था, यानी फलसफा यानी सारे उलूम इसमें शामिल हो जाते। तत्वर जमानी के साथ फलसफे की एक और इस्तिलाह आई, जमाने गुजरने के साथ तदरीजन ये सारे उलूम फलसफे से निकल गए, आराम आराम से फलसफे से
निकल गए।
इल्म अखलाक निकल गया मसलन, इल्म माबदत, इल्म तबीयात, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हाँ, ये सारे उलूम क्या आ गए? खारिज हो गए। तो जो है, पहले फलसफा किस में इस्तेमाल होता था? इन सब उलूम को फलसफा कहते थे, चाहे इल्म अखलाक हो, चाहे इल्म तदबीर मंजिल हो, इल्म माबाद, इल्म तबीयात हो, केमिस्ट्री फिजिक्स, सबको फलसफा कहते थे पहले किस दौर में। लेकिन तत्वर ज़माने के साथ, ज़माने गुजरने के साथ 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 इस फलसफे ने रंग तब्दील किया। जैसे सलात आप पढ़ते हैं फिक्र में, सलात पहले किस माना में था? दुआ में था। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मनकूल हो गया। हाँ, या अब किसको कहते हैं? यही जो आप सलात मखसूसा, अफाल मखसूसा जो हैं, इनको आप सलात कहते हैं अभी। इसी तरह फलसफा जो है, पहले इन सब उलूम को कहते थे, चाहे मेटाफिजिक हो, चाहे तबीयात हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अखलाक हो, चाहे सियासत मदन हो, तदबीर मंजिल हो, सबको इल्म फलसफा कहते थे। लेकिन ज़माने के गुजरने से ये सारे उलूम से तदबीर मंजिल निकल गया, अखलाक निकल गया, सारे उलूम निकल दिए गए। अच्छा, फिर क्या था फिर? अगर आप कह रहे हैं कि तबीयात निकल गए, सारे इलूम निकल गए, फिर ये किस चीज़ को फलसफा कहा जाने लगा? फलसफा दरवा के इसने जो रुश्त पैदा किया और ये तदरीजन इसका नाम तब्दील हुआ, फिर क्या कहा जाने लगा? इदराक को। किसको? इदराक, जो चीज़ दर्क की जाए, तअक्कुल की जाए, जिसके बारे में फिक्र किया जाए, इसको फलसफा कहा जाने लगा। तो ये सारे उलूम निकल गए। मसलन इस रविश का नाम रविश तअक्कुली है। ये जो फलसफे से ये दूसरे सारे उलूम निकल गए, क्यों? क्योंकि उसमें तअक्कुल नहीं था। तदबीर मंजिल में तअक्कुल है, सियासत मदन में तअक्कुल है, अखलाक में तअक्कुल है, नहीं। तो लिहाजा ये उलूम इससे निकल गए। अच्छा, ये जो इल्म है अभी जो हम पढ़ेंगे, इससे जो दूसरे उलूम वो निकल गए, सीधी सी बात है। ये इल्म ऐसा इल्म है जिसमें किसी मौजूद की खासियत को बयान किया जाता है, किसी मौजूद की
खासियत।
हाँ, मसलन ये मोबाइल, ये किताब, ये
दीवार,
ये हो किसी मौजूद की खासियत को बयान करते। मतलब ये जिस्म है, ये क्या है? ये जिस्म है। या मसलन ये सामने देखें, दीवार की तरफ बार बार आपको दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है? एक जिस्म है। इसको जिस्म है ना, इतना जिस्म है, यहां से यहां तक ये जिस्म है, इसको जिस्म है। खूब, ये जिस्म है, अगर इसकी एक खासियत ये है कि ये कलम लिख सकता है, दुरुस्त? इसकी एक खासियत ये है कि आप इसको मसलन जेब में डाल सकते हैं, इसकी एक खासियत ये है कि आप यूं कर सकते हैं मसलन। खूब, ये सारे इसके काम है ना। अच्छा, ये सारी इसकी खसूसियात के बावजूद ये लिखता है, रखता है, मसलन वसत में रखने के काम आता है। खूब, चाय में भी कभी कभी आप शक्कर इससे मिलाते हैं, ये सारे इससे काम करते हैं आप, वो काम भी करते हैं जो मैं बयान नहीं कर रहा अभी। खूब, अच्छा, इसकी ये सारी खसूसियात है या नहीं है? है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि यह मौजूद है, इसको वजूद है। इन सारी खसूसियात के बावजूद इसकी एक खासियत यह है कि ये मौजूद है, यानी क्या? यानी ये हस्ती रखता है, ये है, कोई नहीं कहेगा ये नहीं है। जो भी देखेगा, अगर अक्लमंद होगा, कहेगा ये है, इसका वजूद है। तो इल्म फलसफा या इल्म कुल्ली, इल्म ये जहन में नाम रखते हैं, इल्म फलसफा, फलसफा उला, या मेटाफिजिक, या इल्म माबद तबीया, ये सारे इसके नाम हैं जो हम पढ़ रहे हैं। खूब, ये किसी मौजूद की खासियत से बहस करते हैं। खूब, लेकिन वो खासियतें जो उसके वजूद से ताल्लुक रखती हैं, मौजूद बिमा हुआ मौजूद, یہ علم فلسفہ اس کی دوسری خاصیتوں سے بحث نہیں کرے گا، وہ خاصیت جو اس کے وجود سے تعلق رکھتی ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ قلم کیا ہے؟ حادث ہے. حادث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ علم کلام اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ایک چیز حادث ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قدیم. حادث اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی ایجاد کرنے والا ہو، پہلے نہ ہو پھر ہو. حادث یعنی جدید. مثلا اب یہاں میں مانا کر رہا ہوں، اب وہ علم کلام میں جو ایک جدید وہ قانونی اصطلاح ہے ان میں نہیں پڑھ رہے ہم ابھی، سمجھانے کے لیے آپ کو. حادث یعنی مثلا جدید. مثلا اس کی یہ خاصیت وجود کے حساب سے، وجود کے حساب سے یہ ہے کہ یہ جد، یہ کیا ہے؟ حادث ہے. حادث یعنی کیا؟ یعنی ایسے نہیں کہ یہ ازل سے تھا، ازل تک ابد تک رہے گا، ایسے نہیں ہے. یہ نہیں تھا پہلے، اس کو کسی کمپنی نے ایجاد کیا ہے. یہ کس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے وجودی، کہ یہ کیا ہے؟
کسی نے بنایا ہے،
کسی نے بنایا ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ حادث ہے. خوب، یہ البتہ اس کی اور بھی اس کی احوالات ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک اس کی کیا تھی؟ یہ خاصیت یہ تھی کہ یہ کیا ہے؟ حادث ہے. مثلا تو علم فلسفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان چیزوں کو بیان کرے گا، موجود کی وجود کے حساب سے خود سے بیان کرے گا، دوسری طرف نہیں جائے گا. یہ موجود کیسا وجود؟ اللہ ہے تو کیسا وجود ہے اس کا؟ حادث ہے الیعوذ باللہ، یا قدیم ہے خدا کا وجود؟ اہل بیت علیہ السلام کا وجود حادث ہے یا قدیم ہے؟ وہ مثلا اس کے بارے میں ہو، موجود بما ہوا
موجود.
اچھا، اس فلسفے میں جو ہم گفتگو کریں گے، آپ کے محضر میں عرض کریں، اس فلسفے میں پہلے فلسفے کی میرے خیال میں جو تعریف ہے اس میں بعد میں آتے ہیں، کیونکہ خود آغا نے تعریف کی ہے کتاب میں، کتاب میں تعریف کی، وہ کتاب سے پڑھیں گے. کتاب میں تعریف کی، وہ جو کتاب میں چیزیں بیان نہیں کی گئیں یا کم بیان کی گئیں، کم رنگ بیان کی گئیں، ان کو میں پہلے بیان کر دوں مقدمہ، تاکہ آپ کا ذہن کھلے. خوب، اس فلسفے کی روش کیا ہے؟ یعنی فلسفے کا جو علم ہے، علم فلسفہ جو ہے، اس میں بحث کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے بحث کرتے ہیں؟ اس میں علوم تجربی میں الگ انداز سے بحث ہوتی ہے، سیاست مدن میں الگ انداز بحث ہوتی ہے، فزکس کیمسٹری میں، ریاضیات میں ایک الگ انداز سے بحث ہوتی ہے. اس کی روش کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی روش فلسفے کی عقلی ہے، تعقلی ہے. عقل ہے فلسفے کی روش. کیا ہے؟ عقل ہے. علم کلام اور فلسفے میں بس فرق کیا ہو گیا؟ اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، فلسفے اور علم کلام کا فرق واضح ہو گیا، وہ یہ کہ علم کلام میں روش کیا ہے؟ نقلی ہے، عقلی ہے، سب کچھ ہے اس میں چلتا ہے. عقل سے بھی استدلال کریں گے وہاں، نقل سے بھی استدلال کریں گے، قرآن کی آیات بیان کریں گے، روایات ہی بیان کریں گے، نہیں، یا یہاں پر کیا ہے؟ عقل، عقل سے استدلال ہوں گے، برہان ہوگا. بس فلسفے کی روش، طریقہ کار کون سا ہے؟ عقلی ہے. یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی سوال آپ سے پوچھے فلسفے کی روش کیا ہے؟ روش ہے عقلی ہے. اچھا، جب عقلی ہے آغا، تو ایک تو فائدہ ذہن میں آ گیا، وہ کون سا؟ جب کہہ رہے ہیں کسی بحث کے لیے، کسی علم کے لیے عقلی ہے، تو یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی، تو یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے فقط، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، مسیحیوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، جو بھی عقلی بحث کرنا چاہے حاضر ہے. بسم اللہ،
جس کے پاس عقل
ہے. یعنی اس کی روش کیا ہے؟ عقلی ہے. اس کی روش کیا ہے؟ عقلی. یعنی کیا؟ یعنی آفاقی ہے. یعنی آپ مثلا اگر ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، سمجھانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیں، ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا مجھے گھر چاہیے نیروگا میں، گھر آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ نیروگا میں ڈھونڈیں گے. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھر چاہیے کہاں پر؟ निरुगामी। एक दफा आप चाह रहे हैं कि कुंभ में मुझे घर चाहिए, अब तो घर कुंभ में ढूंढेगा ना। एक दफा कह रहा है कि मुझे घर चाहिए, बोलो ही कि मुझे चीन में घर लेके दो, लेकिन घर मुझे चाहिए। हो ये क्या है, अब मावरा हो गया। अब इसके लिए घर जान मिले ले लेगा, घर इसको मिल जाए। मैं समझाने के लिए मिसाल दी मैंने, ठीक है। आप जब इल्म कलाम में बहस करेंगे, नकली रिवायत लेके आएंगे, अखलाक में लेके आएंगे, रसूल खुदा की रिवायत लेके आएंगे, मौला अली नबी सल्लम का कलाम लेके आएंगे, कुरान की आयत बयान करेंगे, है नहीं ऐसे ऐसे करेंगे, रियाजियात में आप फार्मूले बयान करेंगे, लेकिन इल्म फलसफा में क्या करेंगे आप, ये नहीं है कि आके मसीह बहस करे आके। अच्छा इनका इनसे ही बहस होगी, ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या है, अक्ल है, जो भी है इसकी रमिज क्या है, अकली है। अकली है यानी आफाकी है, किसी खास तबके के साथ ताल्लुक इसका नहीं है। वाज़े कर लें, मतलब उसूल का भी किसके लिए, शियों के लिए,
शियों के लिए,
खूब शिया इस पर अमल करते हैं, मगर फलसफा क्या है, आफाकी है, सबके लिए, इस किसके लिए, सबके लिए। ये वाज़े हो गया, यानी क्या, यानी ये अकल जिसके पास होगी ये कम्युनिस्ट के साथ बहस कर सकता है, दहरिये के साथ बहस कर सकता है, काफर के साथ बहस कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी रवैया क्या है, अकली है, मसीह के साथ बहस करता है, बस फलसफी अकली हिसाब से बहस करता है, नकल इन चीजों से बहस
नहीं।
अच्छा फलसफे में ये चीजें समझ में आ रही हैं, फलसफा, क्योंकि इब्तदाई चीजें अगर इनको नहीं जानेंगे तो फिर ये आपको फिर किताब में फिर वहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा फलसफे में बहुत सारे अकली काम होते हैं, बहुत सारे, ऐसे नहीं कि अकल अकल का एक ही काम होता है बस, नहीं, फलसफे में बहुत सारे अकली काम होते हैं, और सबसे इल्म फलसफा बहस करता है, अकल के बहुत काम है, अकल का एक काम नहीं है, बता रहा हूं मैं, अकल की भी बड़ी करामात हैं, खुदा ने जो हुज्जत बातनी करार दिया है इसको, अकल को, जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम पर हुज्जत कौन है, तो मौला ये कह देते मैं हूँ, हम हुज्जत हैं आपके ऊपर, मौला ने ये नहीं कहा मैं हुज्जत हूँ, मौला तो हुज्जत थे, मौला ने फरमाया अकल, अकल हुज्जत है, तुम्हारी अकल क्या कह रही है, अकल हुज्जत है, यानी क्या, अकल का इतना यानी असर है जो खुदावंद मुताल ने इसको हुज्जत करार दिया है, यानी कुछ भी ना हो ये अकल इंसान के विजदान और जमीर को जगाती रहती है, ये क्या है, जागो, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, इसका एहतराम करो। हो काफी ऐसे उमूर हैं जिसमें अकल तो हुज्जत बात नहीं है, को अकल के बहुत सारे काम है, आगा जिसे फारसी में कहते हैं कारकिर्द अकल, अकल के काम या अकल के इस्तेमाल हाथ, जो भी आपको है, एक है अकले अव्वली, अकले
अव्वली,
अकले अव्वली, ये अकल के अक्साम पढ़े फिर तदबीर करते हैं, एक है अकले
अव्वली,
अव्वली, ये अकले अव्वली जो हजरत है ये अव्वलियात को दर्क करता है, मसलन दो और दो कितने हैं,
चार
है, दो और दो कितने हैं,
चार
है, इज्तिमाई नकीज़ैन महाल है, अभी हम बैठे भी हों और न भी बैठे हों ये महाल बैठते हैं, और दूसरी जिहत से कहीं से न बैठे हों और सो रहा है तो और बात है, ऐसे उसको कह दे कि नहीं बैठे हो, ये जिहत ही तब्दील कर दी, लेकिन इसी जिहत में जो बैठा है उसी जिहत में ये कहना कि नहीं बैठा है ये इज्तिमाई नकीज़ैन है, इज्तिमाई नकीज़ैन क्या है, महाल है। अच्छा बस जो वाजे वाजे चीजें अकल दर्क करती है ना, ये बैठा है ये नहीं बैठा है, इज्तिमा नकीज़ैन महाल है, मसलन दो और दो चार है, चार और चार आठ है, तो ये जो वाजे वाजे चीजें हैं इनको जो दर्क करती है उस अकल का नाम है अकले अव्वली, अकले
अव्वली।
अच्छा ये सारी जो अकल दूसरी अकलें हैं ना,
جو کسری دوسرے استعمال عقل کے ہیں، یہ سب اس عقل کے محتاج ہیں. عقل اولی جس کی کام نہیں کرے گی دوسرے عقل کام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ابتدائی عقل اس کی کام نہیں کرے گی، جو بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے نا، یہ کام نہیں کرے گی مثلا، تو دوسری کہاں کام کرے گی؟ اچھا، دوسری عقل کی جو قسم ہے وہ عقل تحلیلی. ہو، یہ عقل تحلیلی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، مندمج جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مندمج ان کو کیا کرتی ہے. ہاں مثلا یہ قلم ہے، اس کا میں ڈھکن کھولا، بند تھا نا ڈھکن، میں نے اس کا ہو، اب ذہن میں بھی اس کی صورتیں کیا ہیں، مختلف ہیں. مثلا قلم معلوم ہے، قلم حادث ہے، قلم کو طول ہے، قلم کو عرض ہے، قلم معلول ہے، اس کی کوئی علت ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ عقل. یہ خود نہیں آیا، اس کو کوئی کسی نے بنایا ہے، کسی فیکٹری سے آیا ہے. یہ کالا ہے، اس کا اتنا وجود ہے، یہ اتنے میٹر ہے، یہ لکھے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ عقل. عقل تحلیلی. اچھا، اس کا زمان ہے، یہ کسی زمانے میں ہے، یہ کسی جگہ پہ ہے تو اس جگہ کو یہ بھرے گا، اس کا مکان ہے. اس عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل
تحلیلی.
عقل تحلیلی دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے عقل کی، عقل کلیاب.
کلیاب
کلیاب یہ عقل کلیات کو درک کرتی ہے. خوب، یہ عقل کیا کرتی ہے؟ کلیات کو درک کرتی ہے. کیسے؟ عابد کو دیکھا، عباس کو دیکھا، غلام حیدر کو دیکھا، ساجد کو دیکھا، مجھے دیکھا، یہ سارے سب چیزوں کو دیکھا. اس نے ایک، ان یہ چھ سات مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مشترک مفہوم نکالا. انسان مطلب چھ سات چیزیں دیکھے گا، یہ بھی وہی کر رہا ہے، یہ بھی وہی کر رہا ہے. اچھا، مثلا ایک شخص آیا، اس کو وائٹ کلر کی ڈریس ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے. دوسرا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. تیسرا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. چوتھا آیا، اس نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے. خوب، ٹھیک. اب اس نے کیا قانون نکالا، درک کیا، یہ مختلف چیزیں دیکھی نا اس نے، مختلف انسان دیکھے. اچھا، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کی ڈریس ایک ہے. ایک مفہوم نکال دیا، یعنی آپ سب طالب علم ہیں. یعنی آٹھ شخص دیکھے، ایک عنوان نکال دیا، طالب علم. کسی کو اس نے بتایا نہیں. کیا بتایا؟ طالب علم. یہ کون کرتی ہے؟ یہ عقل. ایک دفعہ اس کو کسی نہ کسی طرح کے ذخیرے میں تھا، یہ ایسے ہوتا ہے. اب اس نے ایک مفہوم نکالا، اس عقل کو کہا جاتا ہے عقل کلیاب. عقل ایک مشترک مفہوم نکال رہا ہے. ایک عقل کی ہے قسم عقل شبی ساز. عقل شبی ساز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان میں خداوند متعال نے خلاقیت کی صلاحیت عطا کی ہے. خلاقیت یعنی خود عقل ایجاد کرتی ہے. ایک دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو درک کرتی ہے، نہیں، ایک دفعہ عقل خود خلق کرتی ہے کچھ چیزوں کو. یا آپ جو دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ عقل کے کام تو ہے، ظاہر عقل کے کام ہے. یہ ساری چیزیں اس انداز سے یوں بنانا چاہیے، یہ کس نے بنائی؟ عقل نے بنائی. یہ یوں بنائے جائے، اس میں اندر ہو اور پھر یوں، اور یہ گرم کرے، یہ کس نے بنائی؟ عقل خلاق کہیں یا عقل شبی ساز کہیں. ایک عقل کس میں؟ عقل توصیفی. ہو، یہ وصف بیان کرتی ہے، خدا ایسا ہے، اہل بیت علیہ السلام ایسے ہیں، یہ وصف بیان کرتی ہے. ایک عقل کس میں؟ عقل استدلالی. عقل
استدلالی،
عقل استدلالی میں کیا ہوتا ہے؟ برہان آپ نے پڑھا ہے، قیاس پڑھا ہے آپ نے، قیاس منطقی، قیاس پڑھا ہے. خوب، اس میں حد وسط ہوتی ہے. یہ حد وسط کو جو چیز درک کرتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل استدلالی. عقل استدلالی. अच्छा, क्योंकि सीधी सी बात है, हद्यवसत अगर ना हो तो बुरहान क्यास किसी काम का नहीं रहेगा। इस हद्यवसत को जो चीज दर्क करती है उसको अकले इस्तदलाली कहा जाती है। एक अकल की किस्म है अकले इंसजाम बख्श, अकले इंसजाम बख्श में यानी क्या, यानी मैं ये जो निजाम बना रहा हूं, मसलन कोई निजाम बना रहा है, कोई किताब लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हो ये जो बना रहा है ये अपनी बातों को देखेगा, मेरी बातों में तारस तो नहीं है, कल मैंने कहा था कुछ और आज कुछ और कर रहा हूं, ये खुद इंसान सोचता है ना यार। मसलन मैं अशरा पढ़ रहा हूँ, मसलन अशरा पढ़ रहा हूँ, पहली तकरीर में मजले अशरे की पहली मजलिस में मैंने एक बात की, लेकिन पांचवी मजलिस में उसकी ही बरस कर दी, हो इसको कौन दर्क करता है, अकल, कि मेरी बातों में तहाफुत तो नहीं, तहाफुत यानी तारुस तो नहीं है, ये जो सारी बातें करके एक दूसरे का दूसरे साथ रब्त जोड़ना और तार उसको दर्क करना, अदम तारुस दर्कना, इसको इसका क्या नाम है, अकले इंसजाम बख्श, मुनसजिम करता है बातों को। मसलन अगर अगर ये बिल्डिंग ही बना रहा है, कोई बनना है, कोई मिस्त्री है, कोई मसलन इंजीनियर है, तो नक्शा ऐसा बनाएगा कि मसलन अगर दीवार खड़ी कर दे तो उस लेटरिन का दरवाजा ही ना निकले, उसको कहेगा ओ भाई तुमने कमरा तो बना लिया लेटरिन, अरे क्यों, क्योंकि उसने अपनी बातों में ही इंतजाम नहीं दिया अपनी बातों को। ऐसा काम करेगा कि एक बात एक उसकी इसका मौरिद दूसरे मौरिद से टकराए नहीं है, इस इंतजाम दे, मुनसजिम करे अपनी बातों को, एक बात कही दूसरी कही तीसरी कही चौथी कही पांचवी कही, ये ऐसे करे कि ये इससे न टकराए, ये दूसरी से न टकराए, ये तीसरी से न टकराए, इंतजाम बख्श। इस अकल को क्या कहा जाता है, अकले इंतजाम बख्श। एक अकल किस्म है अकले शुहूदी, अकले
शुहूदी
हो, ये अकल मुख्तलिफ हकायक को शुहूद करती है, हकायक को पा लेती है। इंसान जब तकवा के उन मरहलों को तय करता है, मसलन हो इस अकल को क्या कहते हैं, अकल शुहूदी, अलबत्त शुहूद के दराजात है। मसलन इंसान भूख को महसूस करता है, हो मोहब्बत अपने अंदर देख रहा है, मोहब्बत अपने अंदर देख रहा है, कोई चीज वजूद रखती है, ये जो देखा मैंने यार, ये निजाम किसी चलाने के बगैर चल ही नहीं रहा, गाड़ी भी है इतनी सी, वो भी कोई ड्राइवर चला रहा है उसको, या रिमोट कंट्रोल से चल रही है, यानी कोई चला रहा है ना, या उसमें बैटरी में वो सेल डाल दें फिर चलेगी, मसलन ये बल्ब है खुद नहीं चलेगा, बटन दबाओ फिर चल रहा है, अब क्या कहेगा, कोई है इसको जो चलाने के बगैर नहीं चलता, इस कायनात को किस कौन दर्क कर रहा है, अकल, अकले शुहूती मोहब्बत को दर्क करती है, काफी चीजों को ये अकल पा लेती है, जैसे भूख को महसूस करते हैं, भूख को तो महसूस करते हैं, इन चीजों को भी क्या करते हैं, हम पा लेते हैं, हम हस्ती को पा लेते हैं, ये है, ये चीज है, कोई ऐसे नहीं कहे कि नहीं है, है कोई आदमी किसी इंसान को देख के कहे नहीं है, कहेंगे तुम्हारी तबीयत सही नहीं, तुम्हारी तबीयत
सही नहीं,
सही नहीं। ये सूफिस्ताई क्या करते हैं, सूफिस्ताई सफसता, सफसता सुना है, सफसता सफसता का क्या मतलब है, सफसते का क्या मतलब है, वाकियत का इनकार करना, वाकियत इनकार कर रहे हैं, ये जो वाकियत के इनकार करते हैं, अच्छा ये वाकियत का जो इनकार करते हैं, हम कुछ अफराद वाकियत का इनकार करते हैं, जो वाकियत का इनकार करते हैं दरवाके इनकी कुछ अकसाम है, उनकी कुछ
अकसाम,
कुछ कहते हैं मैं भी हूं, मैं भी हूं, खारिज में भी सब कुछ है, غلام در بھی ہے، گھر بھی ہے، کم بھی ہے، نجف بھی ہے، دنیا ہے، خارج میں بھی موجودات، لیکن میں ان کو درک نہیں کر سکتا، میری سمجھ پائے ان کو درک نہیں کر سکتا، اسی لیے ان کا انکار کر دیتا ہے، یعنی کہتا ہے میں بھی ہوں وہ بھی ہے لیکن میں اس کو درک نہیں کر سکتا. اچھا، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں لیکن باقی کچھ نہیں ہے، میں ہوں یہ بھی سب ستا، یہ بھی سفسطائی ہے، یہ بھی سب ستا ہے. سفسطے کا مطلب ہے واقعیت کا انکار کرنا، ظاہر ظہور ہر چیز کا انکار کر دے نہیں ہے. ایک فلسفی تھا وہ کہتا تھا کہ میں بھی نہیں ہوں، میں کہاں ہوں. ہاں ابھی تک ہیں ایسے افراد موجود ہیں، اپنے آپ کو بڑا فلسفی کہتا ہے، یعنی میں اس میں بھی شک کرتا ہوں کہ میں ہوں، کہاں کیسے ہوں. اچھا، اتنا ایسے جو افراد واقعیت سے جو انکار کریں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سوفسطائی. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفسطا. واقعیت سے جو انکار کر دے اس کو سوفسطائی کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو سفسطا کہتے ہیں. یہ سفسطا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں سفسطا کیوں کر رہے ہو، یعنی کیا؟ یعنی حقیقت کا انکار کر رہے ہو تم. اگر تیسرے وہ افراد ہیں جو سب سے خطرناک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں. پہلے وہ تھے جو خود کو بھی مانتے ہیں دوسروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو درک کرنے اور ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہے. کچھ ایسے تھے جو خود کو مانتے ہیں، دوسرے کسی کو نہیں مانتے. تیسری وہ قسم ہے جو خود کو ہی نہیں مانتے، میں بھی نہیں ہوں، کہاں کچھ نہیں ہے، ہے ہی نہیں، اصلا وجود کا انکار ٹوٹل. اچھا، یہ علم فلسفہ ابھی جو ہم پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں، خدا توفیق دے ہمیں کہ اس علم کو جو فلسفہ الہی پڑھیں گے ہم، فلسفہ الہی یعنی ایک چیز میں یہاں پر یہ بھی روشن کر دوں، یہ اللہ کے بارے میں یہ چیز ہے. ایک یونانی جو فلسفہ ہے نا، یونانی فلسفہ، اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے. یونان کا جو فلسفہ ہے، غرب کا جو فلسفہ، جیسے غرب کہوں مغرب کہوں، مغرب کا جو فلسفہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ ادراک بما ہے، وہ ادراک کے بارے میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے؟
موجود
کے بارے میں بحث ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ الہی یا فلسفہ اسلامی. فلسفہ الہی، خوب. فعلاً ہم موجود کے بارے میں بحث کریں گے تاکہ وہ
ذات کو.
اچھا، کچھ عبارتیں پڑھیں اور پھر آپ کی زحمت تمام کریں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، وہو خیر ناصر و معین. بس فلسفہ کی تعریف کیا ہو گئی؟ ایسا علم جو ہستی کے احوال کے بارے میں گفتگو کرے. خوب، وجود کے احوال کے بارے میں گفتگو کرے. واضح ہو گیا؟ مقدمہ کس میں آگا؟ آگا تبا تباہی. ایک بات آپ کے ذہن میں رکھیں کہ فلسفے کی جو کتابیں ہیں، اگر آپ کو فلسفہ سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے جگاڑ، بس پڑھا بدایا پڑھ لی اپنے، سبحان اللہ، جگاڑ کرنا ہے تو پھر یہ ہمارے درس میں آپ آئیں گے اور بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، گھر چلے جائیں گے، کتاب کو ٹھپ کر کے بند کر دیں گے، دوسرے دن آئیں گے وہیں سے شروع کریں گے. اچھا، خوب، انٹرنیشنل یہ پڑھنا نہیں، یہ کہیں گے جگاڑ ہے. پڑھنا ہے تو اس کے لیے میں کچھ آپ کی نظر میں کچھ آرائز پیش کروں گا. نمبر ایک، کلاس میں آئیں تو فعال آئیں، ایسے نہیں کہ مثلا ایک دن آئیں دوسرے دن نہ. یہ فلسفہ ہے، بلکہ ہر علم میں سے ہے. کسی علم کے ساتھ انسان سچا ہوگا، سچائی کے ساتھ پڑھے گا تو وہ انسان کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یا آپ خود جانتے ہیں، حوزے میں رہے ہیں، بس سب سے پہلے کلاس میں فعال آئیں، एक कड़ी दूसरे के साथ मजबूत है, वरना जंजीर टूट जाएगी। जंजीर के घर होते हैं ना, एक निकाल दें खत्म, जुदा हो जाएगी, ये घर दूसरे से जुदा हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कहेंगे आज जा रहा हूँ कल फिर व्हाट्सएप पे देख लूंगा, आबिद भाई से या किससे मैं दर्स ले लूंगा, न शुदा, मजबूरी हो कोई वाजिब काम हो तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा। लेकिन हमने उलमा को यहाँ देखा है, अलबत्त बुजुर्गवार आए, हम तो उनकी खाके पा भी नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह सैफी मानंदरानी, उनके बेटे का जनाजा पड़ा हुआ था, उन्होंने दर्स पढ़ाया था हमें सामने, हमारे आंखों से देखा हुआ, दर्स पढ़ाया उन्होंने, फिर जनाजा पढ़ाया, बेटे का जनाजा था, बड़ा बेटा, वो भी मुज्तहिद। तो हम जितने सच्चे होंगे, हताकि उन्होंने देखा ख्वाब में कि आगा जवाद जो उनके फर्जंद थे, वो देखा ख्वाब में कि इमाम ज़माना जल्ला फरज व शरीफ के महजर में है, और मौला मसलन बड़ी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा है, और आगा सैफी मसलन बैठे हुए थे दूर, और आइए आगा को जाम दे रहे थे, मसलन पानी दे रहे थे आगा जवाद। तो देते हुए कहा कि आगा ये मेरे वालिद मोहतरम है। तो यानी जब जो अफराद कह रहे थे आगा सैफी को कि आगा आप रो क्यों नहीं रहे, और आपने दर्स क्यों नहीं तातील किया, मसलन आपने शोक क्यों नहीं मनाया उस अंदाज से जैसे मसलन एक बड़े जवान बेटे पे करते हैं, तो आगा ने जवाब दिया मन दारम नी बी नम के दर महजर इमाम आस दर। कुछ अफराद कह रहे थे, मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लेकिन मुझते जा रहे थे कि आगा सूख थी, बेटा आपका मर गया है, आप तो जल गए। तो आगा ने कहा कि नहीं, मन दारा मी बीनम के दर महजर है इमाम आस, जरा भी सोचा उस यानी मंजिल तक। तो लिहाजा दर्स यानी नो कम्प्रोमाइज, दर्स में शिरकत फाल, उस्ताद आए तो शागिर्द को आना है, नंबर एक। दूसरा, जैसे ही दर्स ख़त्म हो तो जल्दी में किताब बंद न करें। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि दर्स पढ़ने के बाद 5 मिनट इबारत को देखें, आगा ने ये हमने पढ़ा क्या पढ़ा, 5 मिनट देखें किताब को, हो वक्त है तो 5 मिनट देख के फिर बंद करें, नंबर दो। नंबर तीन, दर्स जब घर जाएं इसको एक संगीन इसका मुताला करें। ये तो 5 मिनट वाला तो ऐसे ही था कि उस टाइम जो चीज खुद जो रवान शनास हैं, जो जहन के मास्टर हैं, मास्टर माइंड हैं, वो कहते हैं कि अगर 5 मिनट बाद में आपने पढ़ा तो वो आपके हाफ़ज़े में चला गया। अब दोबारा इसको अगर हिफ्ज़ करना है, घर जाके इसको दकीक मुताला करें इसका। ये जो कहते हैं ना, मसलन कुछ अफराद कहते हैं हमें कोई चीज़ याद नहीं होती, क्या होता है उनको, रविश नहीं आती, उनको तरीका ही नहीं आता याद करने का। याद करने का भी तरीका होता है, पहले दिक्कत से दर्द सुने शिशदुंग होके हवास के साथ बिल्कुल, उसके बाद उस्ताद जो बता रहा है वो जो नुकात हैं, ज़मायर पलटा रहा है, वो लिखते जाएं। आप क्या इमाम थोड़ी है, हर चीज़ आपके जहन में चली गई, याद हो गई आप, नहीं, इंसान है भूल जाएगा, 2 दिन के बाद वो चीज़ भूल जाएगा। लिखें किताब को, बिल्कुल काला कर दें किताब को, क्यों ऐसे लिखें, ऐसे पढ़ें कि अगर आपको साल के बाद कहा जाए पढ़ाओ तो कहो मैं हाजिर हूँ, आओ। ऐसे ना कि फिर आपको लिखना पड़े, ये क्या था, अच्छा ये भी पढ़ा था हमने, इतनी जैसे बेचने के लिए किताब रखी हो, हाँ पढ़ा था, अच्छा 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 ये लगा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, अच्छा। लेकिन जब इंसान को सारा काला कर देगा, किताब को ज़मायर पलटाई होंगी, मसलन हावाश ही लगाए होंगे, माना मतलब वाजे लिखा होगा, तो वहीं पर उसका जहन चला जाएगा, उस्ताद ने ये कहा था, इसका मतलब ये है, शरह में यूँ लिखा हुआ था, मुबाहसे में ये किया था, नंबर तीन। नंबर चार, अगर क्योंकि ये ज़रूरी है, कुछ इंसान मुबाहसे से बेनियाज नहीं है, मुबाहसा ज़रूर करे। उस्ताद तो बयान करता जा रहा है खूब, इसको आप भी तो बयान करें, नहीं करें, काफ़ी चीज़ें आपको अभी भी समझ में नहीं आई होंगी, मसलन 100% समझ में आ जाए, ये बड़ा मौजज़ा होता है दर्स में, 100% दर्स समझ में आ जाए। जो चीज़ें समझ में नहीं आई, मुताला किया, संगीन मुताला किया, उसके बाद जो चीज़ें रह गई वो कहाँ कहाँ पर करें, मुबाहसे में करें, मुबाहसा करें उसके बाद। फलसफे के लिए उस्ताद फरमाते हैं मुबाहसा किया, तअक्कुल करें, डीपली तअक्कुल करें, तसव्वुर और फिक्र करें, ये जो आगा ने कहा है क्यों, क्योंकि फलसफा है ही अक्ल, आपको बताया मैंने, अक्ल अक्ल की बाजी है सारी, है यानी ऐसे नहीं उस्ताद ने कहा बस, ऐसे नहीं कुरान की आयत पढ़ दी, नहीं तफक्कुर करें ये क्या है, ये अक्ल की जो मसलन उन्होंने तारीफ की, फलसफे की तारीफ की, क्या है उसमें तवक्कुल, जितना तवक्कुल करेंगे उतने आपके दरीचे खुलते जाएंगे बेहक अहले बैत अलैहिम सलातो व सलाम। इस किताब के साथ साथ अगर आपको हल करनी है किताब, तो एक छोटी सी किताब है आगा शहीद मुतहरी की, तीन उलूम पर मुश्तमिल है, फलसफा, मंतिक और इरफान। उसमें फलसफे की मुख्तसर बहस है, 10-15 सफ़े हैं उसके, 20 सफ़े, वो पढ़ें, वो पढ़ें ताकि आपके जहन में आ जाए तो हम क्या कर रहे हैं, ये अरबी मतन आपने शुरू किया, जैसे पाकिस्तान में मंतिक शुरू करते हैं, करवाते हैं लड़के लोग, उसको पता नहीं होता मंतिक है क्या। अच्छा, तो उसको इबारत हल नहीं हो रही होती तो मंतिक क्या समझेगा, ये इश्तबा है। तो सबसे पहले आप वो 15-20 सफ़े में आपको पता तो चल जाएगा क्या हम क्या कर रहे हैं। खूब, दूसरा ये इब्तदान कर दें आप, दूसरा जो जो यहाँ बहस पढ़ रहे हैं आप, मुबाहसा कर रहे हैं, वो आप शरह मंजुमा में देखें, क्योंकि अल्लामा तबातबाई का दगदगा ये था कि इस किताब को शरह मंजुमा की जगह पे लिखा रखा जाएगा। पहले शुरू में क्या पढ़ाई जाती थी, शरह मंजुमा, जो मुल्ला हादी सब्ज़ वाली किताब है फलसफे की, वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन आगा ने काम किया और क्या किया, फलसफे को शरह मंजुमा की जगह रखा एक नए अंदाज में, उसमें जो नकायस थे वो खत्म किए और आगा ने एक जहमत की है। हो, और शरह तजरीद है अल्लामा हिल्ली की, कशफुल मुराद के नाम से, वो आप उसका भी मुताला, इसमें जो बहस है वो सुंदर मुताला करेंगे। अगर इस अंदाज से आप फलसफा पढ़ेंगे, फलसफा आपने बिदाया नहाया पढ़ा, तो आपको मजा आएगा कि हम वाकयन कुछ पढ़ रहे हैं। बाकी किताबें तो हजार इंसान पढ़ता है, फिर 10 दिन के बाद वो किताबें भूल जाता है। तो मेरे ख्याल में कल इबारत तत्बीक करेंगे, आज ये मुकद्दमतन हमारी क्लास थी। खुदावंद मुताल हमें अहले बैत अलैहिम सलाम की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.